ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद आज सिंगापुर पहुंच गए। वे सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर वहां गए हैं। सिंगापुर के गृहमंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शाम को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी तौर पर रात्रि भोज का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वोंग के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर के साथ मित्रता को बहुत महत्व देता है। कल दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। वे सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री करीब 6 साल बाद सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री की इस सिंगापुर यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती मिलने की संभावना है। भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत रक्षा सहयोग रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। आसियान संगठन में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत भी है। इससे पहले आज भारत और ब्रुनेई के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो दोनों देशों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बड़ी उपलब्धि बताया है। केंद्र, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स एटीटीएफ के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गृहमंत्री ने कहा कि एनएलएफटी और एटीटीएफ हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में देशभर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। देश में हर साल 5 सितंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देशभर से 50 शिक्षकों का चयन किया है। मौसम विभाग ने गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस सप्ताह के दौरान पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व भारत, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया है। पेरिस पैरालंपिक के 7वें दिन सचिन सर्जेराव ने पुरुषों के शॉटपुट F46 में रजत पदक देश के नाम किया। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड 16.32 मीटर गोला फेंककर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सचिन सर्जेराव को पदक जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।